एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं आयरलैंड के एक बहुत ही अहम लेखक जॉन बैनविल के उपन्यास द सी पर। ये 2005 में आया था और इसने मैन बुकर पुरस्कार भी जीता।
हाँ, और बैनविल का नाम समकालीन साहित्य में मतलब बहुत बड़ा है, खासकर उनकी भाषा के लिए जाने जाते हैं वो।
बिल्कुल, एकदम जादुई भाषा, इतनी सघन, काव्यात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से इतनी गहरी कि लोग हेनरी जेम्स या नाबोकोव से तुलना करते हैं।
सही, मतलब बाहरी घटनाओं से ज्यादा किरदारों के मन की दुनिया में उतरने में उनकी दिलचस्पी दिखती है।
उनकी लिखाई में एक अलग ही वजन है, एक खूबसूरती है। तो द सी ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये तो जैसे शोक, स्मृति, पहचान, इनकी एक भूल भुलैया में सफर है।
बिल्कुल, बैनविल ने कई उपन्यास लिखे हैं, जासूसी नॉवल भी लिखे हैं बेंजामिन ब्लैक नाम से, लेकिन द सी को अक्सर उनके काम का शिखर माना जाता है।
तो आज हम इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे, इसकी कहानी, किरदार, उनके उतार चढ़ाव और वो बड़े सवाल जो ये हमारे सामने रखता है, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए तो शुरू करते हैं इसके मुख्य किरदार से, मैक्स मॉर्डन।
हाँ, मैक्स मॉर्डन, कहानी वही सुना रहा है हमें। वो एक अधेड़ कला इतिहासकार है और उसकी दुनिया हाल ही में उजड़ गई है। उसकी पत्नी एना की कैंसर से मौत हो गई है।
और इस दुख से शायद बचने के लिए या शायद उससे जूझने के लिए ही वो एक तटीय गांव बेलीलैंड्स लौटता है।
हाँ, बेलीलैंड्स ये कोई यूं ही चुनी हुई जगह नहीं है, ये उसके बचपन की वो जगह है जहां उसने अपनी जिंदगी की एक बहुत मतलब बहुत जरूरी गर्मी बिताई थी।
और मजे की बात यह कि वो ठहरता भी उसी गेस्ट हाउस में, द सीडर्स में, जहां सालों पहले वो अपने परिवार के साथ रुका था।
लेकिन अब वो गेस्ट हाउस पुराना हो चुका है, जर्जर, बिल्कुल मैक्स की अपनी अंदरूनी हालत की तरह शायद।
हाँ, कह सकते हैं। तो ये वापसी सिर्फ जगह बदलना नहीं है, ये तो एक तरह से वक्त में पीछे लौटना है। वर्तमान का दर्द इतना ज्यादा है कि वो अतीत के धुंध में पनाह लेना चाहता है, या शायद अनजाने में वही खिंच जाता है।
और यहीं से उपन्यास की खास बनावट भी सामने आती है, कहानी सीधी नहीं चलती।
बिल्कुल नहीं, ये दो बल्कि असल में कहे तो तीन टाइमलाइन के बीच झूलती रहती है, गोते लगाती है जैसे।
कौन कौन सी है वो?
एक तो है मैक्स का वर्तमान, बेलीलैंड्स में उसका अकेलापन, शराब में डूबा हुआ दुख, द सीडर्स का वो उजड़ा माहौल। दूसरा है निकट अतीत, मतलब एना की बीमारी और मौत के वो पल, बहुत तकलीफ देह, बिखरे हुए।
हाँ।
और तीसरा जो शायद कहानी का दिल है, वो है दूर का अतीत, बचपन की वो गर्मी जब उसकी मुलाकात हुई थी ग्रेस परिवार से।
ग्रेस परिवार, मैक्स की यादों में तो वो जैसे किसी दूसरी दुनिया के लोग लगते हैं।
हाँ बिल्कुल, अमीर, स्टाइलिश, थोड़े रहस्यमयी। माता पिता थे कार्लो और कोनी ग्रेस, और उनके जुड़वां बच्चे क्लोई और माइल्स।
और 11 साल के मैक्स के लिए ये परिवार ग्लैमर का, एक अनदेखी दुनिया का दरवाजा था।
खासकर क्लोई, जिससे उसे एक बचकाना सा लेकिन शायद बहुत गहरा लगाव हो गया था।
और यही वो गर्मी थी जिसने मैक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। एक त्रासदी हुई थी उस गर्मी में।
हाँ, एक त्रासदी जिससे वो कभी भुला नहीं पाया, और यही उपन्यास का कह सकते हैं केंद्रीय संघर्ष उभरता है।
ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मैक्स के अंदर की कश्मकश है। क्या अतीत को याद करके, उसे बार बार जीकर हम वर्तमान के जख्म भर सकते हैं, या फिर यादें भी वक्त के साथ बदल जाती हैं, हमारी जरूरत के हिसाब से ढल जाती हैं?
बैनविल यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं, स्मृति पर कितना भरोसा किया जाए, क्या वो सच होती हैं या बस एक कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं।
सही,
मैक्स असल में दो मौतों का शोक मना रहा है, अपनी पत्नी का और अपने उस खोए हुए बचपन का। और मैक्स खुद भी एक किरदार के तौर पर बहुत दिलचस्प है, वो नायक है पर हम उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते।
हाँ, वो क्लासिक अविश्वसनीय कथावाचक है, जैसे कोई दोस्त आपको कहानी सुना रहा हो पर आपको लगे कि वो कुछ छुपा रहा है, या शायद बातों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हो।
वो अपनी भावनाओं से बचने के लिए कला का, शब्दों का जैसे कवच पहन लेता है।
बिल्कुल, चीजों को एक कला इतिहासकार की नजर से देखता है, रंग, रोशनी, बनावट, इन सब का विश्लेषण करता है ताकि उसे महसूस न करना पड़े। दुख ने उसे काफी आत्मकेंद्रित और आत्मदयालु सा बना दिया है।
उसकी यात्रा किसी हीरो की तरह ऊपर उठने की नहीं लगती, बल्कि बिखरने की ज्यादा लगती है।
हाँ, वो अतीत की उन सुनहरी यादों की परतें हटाकर उस खालीपन का, उस शून्य का सामना करता है जो एना की मौत ने पीछे छोड़ दिया है।
और अंत में कोई आसान समाधान नहीं मिलता, कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जीवन की उदासीनता, उसकी जो एक तरह की बेपरवाही है, उसकी एक कड़वी सी समझ और उसे सहने की एक खामोश सी रजामंदी तक वो पहुंचता है, ऐसा लगता है।
और एना, वो तो कहानी शुरू होने से पहले ही जा चुकी है।
हाँ, लेकिन मैक्स की यादों के जरिए वो बहुत शक्तिशाली रूप से मौजूद है। मैक्स उसे याद करता है एक जिंदा दिल, जिंदगी से भरपूर औरत के तौर पर, जो उसके अपने बौद्धिक अकेलेपन से बिल्कुल अलग थी।
लेकिन साथ ही एना की बीमारी के वो मुश्किल पल भी हैं।
हाँ, वो कड़वी बेरहम यादें, शारीरिक गिरावट, बेबसी, ये यादें मैक्स को कचोटती हैं। शायद इसलिए भी कि उसे लगता है कि वो उस वक्त, मतलब भावनात्मक रूप से, पूरी तरह वहां नहीं था।
एना शायद उस ठोस असली दुनिया का प्रतीक है जिसे मैक्स ने खो दिया है और जिससे वो अब भाग रहा है।
बिल्कुल, उसकी अनुपस्थिति इतनी गहरी है। उपन्यास में एक लाइन है, एना हर जगह है और कहीं नहीं, जो कि मृत होते हैं।
वाह, ये लाइन शोक की उस अजीब पहेली को पकड़ती है, जाने वाले की हर तरफ मौजूदगी भी और वो खालीपन भी।
सही, फिर वो ग्रेस परिवार है। मैक्स की यादों में वो लगभग मिथिकी बन चुका है, खासकर बचपन की नजर से।
माँ, एक खूबसूरत, थोड़ी दूर सी लगने वाली छवि, युवा मैक्स के लिए वयस्क स्त्रीत्व का शायद पहला आकर्षण।
हाँ, उस रहस्यमयी वयस्क दुनिया की तरह जिसमें वो झांकना चाहता था पर समझ नहीं पाता था।
और उनके बच्चे क्लोई और माइल्स।
जुड़वा, क्लोई बातूनी चुलबुली सी, मैक्स का पहला क्रश कह सकते हैं। उसके साथ मैक्स ने पहली बार इच्छा और शायद थोड़ी क्रूरता का भी अनुभव किया।
और माइल्स,
माइल्स उसका जुड़वा भाई, वो ज्यादातर खामोश रहता है, एक दर्शक की तरह। उसकी चुप्पी मैक्स की कल्पनाओं और चिंताओं के लिए जैसे एक खाली कैनवस बन जाती है।
और हाँ, उनकी नौकरानी रोज भी थी।
रोज और द सीडर्स की मौजूदा मालकिन मिस वासोर, वो कहानी में बाद में एक अहम कड़ी साबित होती हैं। पता चलता है कि वो असल में ग्रेस परिवार की पुरानी गवर्नेस थी, अतीत और वर्तमान को जोड़ने वाली एक कड़ी।
एक और अहम किरदार है क्लेयर, मैक्स और एना की बेटी।
हाँ, क्लेयर वो बड़ी हो चुकी है, प्रैक्टिकल है और अपने पिता के इस तरह शोक में डूबे रहने और खुद पर तरस खाने से थोड़ी परेशान भी है।
वो वर्तमान की जरूरतों की याद दिलाती है, घर बेचना है, आगे बढ़ना है। वो जैसे असल दुनिया की आवाज है जिससे मैक्स कटकर बेलीलेंस आ गया है।
बिल्कुल, वो मैक्स को जिम्मेदारियों की तरफ खींचती है।
अच्छा, अब जरा कहानी आगे कैसे बढ़ती है उस तरीके पर गौर करें। जैसा आपने कहा, ये सीधी नहीं चलती।
नहीं, बैनविल हमें मैक्स की चेतना के साथ जैसे बहाते हैं। वर्तमान में बेलीलेंस का जीवन एकदम ठहरा हुआ उदास सा है। मैक्स तट पर भटकता है, शराब पीता है, मिस वसौर और एक और बाशिंदे कर्नल ब्लांड उनसे अजीब सी अधूरी बातें करता है।
सब कुछ धुंधला सा लगता है।
हाँ, फिर अचानक अतीत का कोई झोंका आता है, एना के आखिरी दिनों की कोई तेज तकलीफदेह याद, अस्पताल की गंध, दवाइयाँ, एना का कमजोर शरीर, मैक्स का अपना अपराध बोध।
ये यादें बहुत सच्ची लगती हैं, शारीरिक हैं, उनमें कोई रोमानियत नहीं।
बिल्कुल, ये वो कच्चा दुख है जिससे मैक्स भाग रहा है असल में।
और फिर हैं बचपन की उस गर्मी की यादें, वो सबसे ज्यादा प्रभावी हैं शायद।
हाँ, और बैनविल उन यादों को जैसे सुनहरी धूप में नहाया हुआ दिखाते हैं। ग्रेस परिवार का आना, उनका वो अलग अंदाज, समुद्र तट, बच्चों का खेल, क्लोई के प्रति मैक्स का बढ़ता आकर्षण, मिसेस ग्रेस के प्रति उसका वो मासूम सा मोह,
सब कुछ एक सपने जैसा, बिल्कुल बचपन की भूली हुई यादों की तरह।
लेकिन उसी सुनहरी याद के बीच उदासी की एक परत भी है, जैसे आने वाली अनहोनी का कोई इशारा हो।
और फिर वो अनहोनी होती है।
हाँ, समुद्र तट पर एक दिन क्लोई और माइल्स तैरने जाते हैं
और वापस नहीं लौटते, समुद्र उन्हें निगल जाता है।
ये घटना मैक्स की जिंदगी का जैसे केंद्र बन जाती है, एक ऐसा सदमा जो उसके बचपन को खत्म कर देता है और उसकी पूरी जिंदगी पर छाया डालता है।
ये वो क्षण है जिसकी ओर मैक्स की सारी यादें बार बार लौट कर जाती हैं, जिसे वो समझने की कोशिश करता रहता है।
और वर्तमान में कहानी का सिरा जुड़ता है जब मैक्स मिस वसोर से बात करता है। हाँ, और तब एक बड़ा राज खुलता है जिसने उस पूरी गर्मी को एक अलग, बल्कि कहें तो भयावह रोशनी में डाल दिया।
क्या राज?
मिस वसोर बताती हैं कि क्लोई और माइल्स कार्लो ग्रेस के बच्चे नहीं थे, बल्कि कोनी ग्रेस और उसके अपने भाई के बीच एक नाजायज रिश्ते का नतीजा थे। और मिस वसोर, जो खुद कार्लोस से प्यार करती थी, उसने इस राज को छुपाने में मदद की थी।
ये खुलासा तो चीजों को हल करने के बजाय और उलझा देता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि मैक्स बचपन में असलियत के कितने कम करीब था, उस ग्लैमर और रहस्य के पर्दे के पीछे कितना अंधेरा छुपा था।
ये सच्चाई मैक्स को कोई शांति नहीं देती होगी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जीवन की वो अबूझ पहेली और गहरी हो जाती है कि हम दूसरों को या अपने अतीत को भी कितना कम जान पाते हैं। तो शायद जानने से ज्यादा जरूरी है सहना।
उपन्यास का अंत भी कोई नाटकीय मोड़ नहीं लेता।
नहीं, मैक्स समुद्र किनारे खड़ा है, उसी समुद्र के सामने जिसने जुड़वां बच्चों को लील लिया था। उसकी बेटी क्लेयर और उसका पोता भी वहां है। वो उनके साथ जुड़ाव का एक बहुत हल्का सा क्षण महसूस करता है।
ये कोई जीत नहीं है, दुख खत्म नहीं हुआ है।
नहीं, लेकिन शायद इस जिंदा दुनिया की ओर एक छोटा सा हिचकिचाहट भरा कदम है। उसने अपने अतीत के भूतों का सामना कर लिया है और अब शायद वो बस जीने के लिए, सहने के लिए तैयार है।
यहीं से उपन्यास के मुख्य विषय उभर कर आते हैं। सबसे पहले तो स्मृति की प्रकृति। जैसा आपने कहा, मैक्स की यादें भरोसेमंद नहीं है।
हाँ, बैनविल ये नहीं कह रहे कि याददाश्त धोखा देती है, बल्कि ये कि हम यादों को चुनते हैं, बनाते हैं, अपने वर्तमान के दुख और जरूरत के हिसाब से उन्हें ढालते हैं।
वो मशहूर पंक्ति है, अतीत मेरे अंदर दूसरे दिल की तरह धड़कता है।
बिल्कुल, ये सिर्फ याद नहीं है, ये एक जिंदा एहसास है जो लगातार धड़कता रहता है, हमें बदलता रहता है।
इस सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब अपनी यादों के साथ कितना खेलते हैं, उन्हें कितना सजाते सवारते हैं।
दूसरा बड़ा विषय है शोक, और इसे किसी सीधी रेखा या चरणों में नहीं दिखाया गया है, बल्कि एक ऐसी अवस्था की तरह जो समय और यथार्थ की पूरी समझ को ही गड्डम्मट कर देती है।
मैक्स के लिए अतीत वर्तमान से ज्यादा असली हो जाता है।
हाँ, शोक उसे समय के समुद्र में जैसे बहा ले जाता है। ऐना की अनुपस्थिति और जुड़वा बच्चों की मौत का दुख, वो आपस में गूंज जाते हैं।
शोक का अनुभव जिस तरह समय को तोड़ मड़ोड़ देता है, जैसा मैक्स महसूस करता है, शायद कई सुनने वालों ने कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। ये एक बहुत ही अकेला और निजी अनुभव होता है।
और अतीत की ताकत, कैसे बचपन का एक हादसा या एक अनुभव पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर सकता है। जुड़वा बच्चों का डूबना मैक्स के लिए वो प्राथमिक क्षति है जिसने उसकी दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया।
उपन्यास शायद ये कहता है कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर के इन भूतों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
हाँ, जैसा मैक्स सोचता है, हम मृतकों को केवल तब तक अपने साथ रखते हैं जब तक हम खुद नहीं मर जाते। वी कैरी द डेड विद अस ओनली अंटिल वी डाई टू। ये यादों और शोक के उस बोझ की बात है जिसे हम ढोते रहते हैं।
कला और जिंदगी के बीच का रिश्ता भी एक अहम मुद्दा है।
बिल्कुल, मैक्स अपनी भावनाओं की उथल पुथल से बचने के लिए कला, खासकर फ्रांसीसी चित्रकार बोनार्ड की पेंटिंग्स का सहारा लेता है। वो जिंदगी की गंदगी और बेतरतीबी को कला की सुव्यवस्था और खूबसूरती से जैसे ढकना चाहता है।
लेकिन क्या कला सच में जिंदगी की कड़वी हकीकतों का सामना करने में मदद कर सकती है, या ये सिर्फ एक खूबसूरत छलावा है, दूरी बनाने का तरीका?
उपन्यास इस पर सवाल उठाता है, कोई सीधा जवाब नहीं देता।
और पहचान का सवाल भी है, मैक्स कौन है? एक शोकग्रस्त पति, एक विद्वान, अतीत में अटका एक इंसान?
ऐना की मौत और अतीत के राज खुलने के बाद उसकी ये सारी पहचानें जैसे बिखरने लगती हैं। शायद स्व या मैं कोई ठोस चीज है ही नहीं, बल्कि कहानियों और यादों का एक लगातार बदलता हुआ कोलाज है।
मैक्स के मन में वो ख्याल आता है कि शायद पूरा जीवन इसे छोड़ने की एक लंबी तैयारी से ज्यादा कुछ नहीं है।
Perhaps all of life is no more than a long preparation for the leaving of it.
ये काफी निराशाजनक लगता है, लेकिन शायद ये जीवन की क्षणभंगुरता पर एक टिप्पणी है।
इनके अलावा वर्ग भेद का एहसास भी है।
हाँ, मैक्स का ग्रेस परिवार के प्रति वो आकर्षण और अपनी साधारण पृष्ठभूमि को लेकर संकोच, उम्र ढलने का अनुभव और मौत की सच्चाई, ये विषय भी कहानी में बुने हुए हैं।
एक जगह वो कहता है, जीवित रहने का रहस्य एक दोषपूर्ण कल्पना है।
The secret of survival is a defective imagination.
हाँ, शायद इसका मतलब है कि जिंदगी की मुश्किलों को झेलने के लिए हमें हकीकत से थोड़ी नजर चुरानी पड़ती है, अपनी कल्पना को सीमित करना पड़ता है।
और ये सब को जॉन बैनविल अपनी खास शैली में कहते हैं, भाषा बेहद कसी हुई, गीतात्मक, लगभग किसी कविता जैसी।
वाक्य लंबे घुमावदार हो सकते हैं, लेकिन हर शब्द जैसे नपा तोला लगता है। संवेदी विवरणों पर बहुत जोर है, रंग, रोशनी, गंध, स्पर्श, जो पाठक को मैक्स की दुनिया में खींच लेते हैं।
और कहानी कहने का तरीका, वो गैर रेखीय है, बिल्कुल हमारी यादों के काम करने के तरीके जैसा, एक याद से दूसरी याद में कूदना, समय का आगे पीछे होना।
हाँ, और कतीक भी बहुत मायने रखते हैं। समुद्र तो जैसे एक किरदार ही है, खूबसूरत भी, जानलेवा भी, रहस्यमयी भी।
वो समय, अवचेतन, मृत्यु, स्मृति, सबका प्रतीक है।
बिल्कुल, रोशनी का इस्तेमाल भी देखने लायक है, अतीत की वो सुनहरी धूप और वर्तमान का धूसर फीका प्रकाश। द सीडर्स गेस्ट हाउस खुद गुजरे वक्त और क्षय का प्रतीक है।
और कला का जिक्र, खासकर बोनार्ड की पेंटिंग्स का, वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो मैक्स के नजरिए को दिखाता है और कहानी पर एक और परत चढ़ाता है।
तो कुल मिला के इस उपन्यास का पाठक पर असर कैसा होता है? ये कोई हल्की फुल्की किताब तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पाठक को उदासी, शोक और यादों की धुंध में जैसे डुबो देती है। आसान जवाब या सांत्वना यहाँ नहीं मिलती।
हाँ, ये एक गहरा मतलब चिंतनशील अनुभव है। इसमें दर्दनाक खूबसूरती के क्षण भी हैं। बैनविल शोक की बनावट को वो समय का बिगड़ जाना, खुद पर तरस आना, अपराध बोध, खोए हुए पलों को बार बार याद करना बहुत बारीकी से पकड़ते हैं।
किताब खत्म होने के बाद भी इसके सवाल हमारे साथ रह जाते हैं। हम कितना सचमुच याद रखते हैं? हम बड़े नुकसानों के साथ जीना कैसे सीखते हैं?
शायद ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की कई गुत्थियां कभी सुलझती नहीं और हमें उनके साथ ही जीना सीखना होता है।
स्वीकृति शायद समझ या आगे बढ़ने से नहीं आती, बल्कि अपने अंदर के अंधेरों और अनसुलझे सवालों के साथ रहने का तरीका खोजने से आती है।
और ये भी कि अतीत कभी मरता नहीं, वो हमारे वर्तमान को लगातार बनाता बिगाड़ता रहता है, चाहे हम उसे पहचाने या ना पहचाने।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।